नहीं तो कोई कोई ऐसा कह सकते हैं, आप भी कहना चाहे तो कह सकते हैं, मान सकते हैं कि एक ही बात के पीछे पड़ा है, कोई नई बात सुनावे तो हम भी सुने, कैसे भजन करो भगवान की प्राप्ति करो। तो भाई ऐसे समझना चाहिए, किसी के धुन बैठ जाती तो वैसा कहता है विचार। जैसी मन में उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए, कहां से लाए। उस वास्ते ये एक धुन है, परंतु मेरे बैठी ऐसी है विचार से कि शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, इनकी सबकी सम्मति इसमें है, ऐसी व्यक्ति हुई है। कारण के मानव शरीर है, जो भाई होता है बहनों मनुष्य मात्र है, उसका काम यही है कि ऐसा लाभ ले लें तो उस जिसके बाद फिर लाभ बाकी रहे ही नहीं। भगवद गीता अध्याय से श्लोक 22 में आ बच गई, छठे अध्याय का 22वां श्लोक। अच्छे अच्छे गीता के जानकारों से मैंने सुना है कि अपने ऊपर अगर कोई कसौटी लगाकर देखे कि मैंने कितनी उन्नति की है, तो उसके लिए सर्वोपरि एक श्लोक है। 700 श्लोकों में अपनी कसौटी लगाने के लिए एक नंबर का श्लोक है। यं लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ये मानने में नहीं आती बात। मानो लाभ की आखिरी दर्जे की बात, आखिरी हद की बात इससे हो जाए, खुद के जज्ञा इससे बढ़कर लाभ हो ही नहीं सकता। कोई स्वप्न में भी कभी छूना ही नहीं हो कि मेरे को जो चीज मिली इनसे बढ़कर कोई चीज हो सकती है, ऐसा संतोष सदा के लिए हो। एक बात। दूसरी बात, यस्मिन स्थितोर दुखे न गुरुणा भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर गुरु ना भी दुखे न विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी वो विचलित किया नहीं जा सकता। गुरु ना भी बड़े भारी दुख, इसी कारण से उनके शरीर कहते टुकड़े किए जाए, ऐसे क्रम से एक एक टुकड़ा इसलिए किया जाए शरीर का, ऐसा दुख आकर पड़ जाए तो भी वो जो बड़े भारी लाभ है उससे उसका मन विचलित नहीं होता। मन दुख तो पहुंचता ही नहीं। अगर 23वें श्लोक में लिखते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग, दुख पहुंचता ही नहीं। बड़े से बड़ा आनंद लाभ तो मिलता है, दुख पहुंचता ही नहीं। ऐसी स्थिति जीते जी मनुष्य मात्र की हो सकती है। पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा की हो सकती है, मूर्ख से मूर्ख और विद्वान से विद्वान की हो सकती है, और उम्र भर में और थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख और पंडित, पापी और पुण्यात्मा, ज्यादा समय और थोड़ा समय, थोड़े से थोड़े समय में वो चीज प्राप्त हो जाती है। ऐसा गीता में प्रमाण आया है, मैंने कहा अंत काले अंतिम श्वास में भी हो जाते बेड़ा पार। अंत काले माम एवं स्मरण मुक्त हुआ कलेवरम यह प्रयाति मद भाव में याति नास्तत्र संशया। अंत समय में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छूट जाता है तो मेरी प्राप्ति हो जाती में संदेह नहीं। ऐसा भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताई है। तो थोड़ी से थोड़ा समय अंत काल आ गया, शरीर जा रहा, प्राण जा रहे हैं। इसमें एक बात और याद आ गई भाई, भाइयों से बहनों से कहना है अभी आज ये अपने यहाँ का व्याख्यान अंतिम व्याख्यान है, तो कथा सत्संग कुछ होता है तो उसमें विदाई भी दी जाती है, सत्संग होता है तो उसमें कोई कथा होती है तो भेंट पूजा भी होती है। तो एक बात की आपसे विदाई की मांगते हैं, कहीं भी किसी का भी प्राण जाता हो तो उसको भगवान का नाम सुनो। किसी तरह से उसकी भगवान में वृत्ति लग जाए, भगवान की याद आ जाए, तो ये बड़ी भारी छूट है। भगवान ने ये छूट दी है, क्यों दी है तो ध्यान देकर सुनना। मानव शरीर उस परम लाभ की प्राप्ति के लिए मिला और अब जा रहा है बेचारा इस शरीर को छोड़ करके, तो अगर तो उम्मीद नहीं कि शरीर रहेगा जिसे साधन करेगा, तो भगवान देखते हैं कि देख अंत काल में भी तू मेरे को याद करेगा तो तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी, नहीं तो दोनों की फजीती होगी। मैंने शरीर दिया उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए और उसकी प्राप्ति के बिना चला गया तो तेरे शरीर लेने का फायदा क्या हुआ? जैसे पशु पक्षी आदि का शरीर चला जाए अगर फिर दूसरा जन्म हो जाए, ऐसे ही मानव शरीर चला गया फिर और जगह कहीं जाकर के जन्म ले, तो तेरा शरीर लेना ये निर्थक हो गया। और मैंने शरीर दिया कब होगी करी करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं कि जिससे अपना उद्धार कर ले। वो मैंने तेरे को शरीर दिया और तू जा रहा, तेने अपना कल्याण किया नहीं तो मेरी क्या इज्जत रही? मैंने क्या उम्मीद रखी, इतने काम क्या किया, तो अंतकाल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार कर दूं डेरा में। तो इसके लिए मैंने शरीर दिया था, तो मेरा देना और तेरा शरीर लेना दोनों सार्थक हो जाए। इस वास्ते अंतकाल में खूब छूट रखी है। और लोगों में भी ये कहावत है कि भाई अंत मति सही गति, अंत की मति के अनुसार ही गति होगी। सुई होती है उसको ऐसे ऐसे चलाते चलाते जब खींचोगे तो जिस मार्ग से सुई गई उसी मार्ग से धागा जाएगा, टेढ़ा सीधा ऊंचा नीचा ऐसे करते उसी मार्ग जाएगा। ऐसे अंतकाल में जो चिंतन वशी छोड़ता है उसी मार्ग को जाना पड़ता है इसको। तो उसको किसी तरह से भगवान की याद दिला दे। तो अपने भाई बंधु गुरु माता पिता सुहृद जो कुछ है वही है जो इस जीव को परमात्मा में लगा दे। तो आपका अपनापन इसी बात में है कि जिसे भगवान में लगा दे। और उपकार करने का काम, दान पुण्य सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात, इसके समान दूसरी कोई है ही नहीं। बड़ा भारी उपकार है, लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने से भी वो पुण्य नहीं होगा जो एक प्राणी को अंत समय में भगवान की याद दिलाने से होगा। कारण कि उसके न जाने कितने जन्म हो जाएंगे, अगाड़ी 84 लाख जूड़ी है, एक एक जूड़ी भुगतते हुए कितने वर्ष बीत जाते हैं, इतने लंबे रास्ते में पड़ता और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो अरबों जन्मों की महाराज सहायता होगी। तो रुपयों से हो सकता है क्या, ही नहीं हो सकता। और भगवान की याद दिला तो हो जाए। और जिसमें भी अबार का समय इतना भयंकर है, पतन की तरफ जोरों से जा रहा है, कलयुग महाराज का राज्य है, इसमें महान पतन की तरफ जा रहा, अन्याय पूर्वक धन कमाओ, पाप करो, भोग भोगो, निरर्थक समय बर्बाद करो, ताश में, चौपट में, खेल में, तमाशा में, बाइस्कोप में, तमाकू पीने में, चाय पीने में, विष्णु के सेवन करने में, फालतू समय बर्बाद करने के लिए महाराज होटल क्लब कितने कितने खुल गए हैं दरवाजे जिसका कोई ठिकाना नहीं। परमात्म तत्व को प्राप्त करना है भूल गए, इस तरफ होश नहीं है। हमारे भाई बहन सुनना चाहते नहीं। नए जो युवक हो रहे हैं, जो लड़कियां हो रही है पढ़ पढ़ तैयार, इनके भीतर में तो महाराज नजर क्या फितूर आ गया, तो इस बात को वे समझ सकते ही नहीं, समझते ही ध्यान देते ही नहीं। हमने तो स्कूलों में कॉलेजों में कहा है और बड़े जोरों से कहा कि मेरी बात मान लो, मैं आग्रह बिल्कुल नहीं करता, पर तुम्हारी शंकाओं तो सामने रखो, बात तो करो। पढ़े लिखे आदमियों के सामने मेरे काम पड़ा है, एक जगह की बात है, संस्कृत अंग्रेजी आदि जानने वाले सज्जन थे, 5-7 आए कहीं मिल करके और हमारे से कहने लगे ये जितना संसार में दुख है ये साधुओं ने और ब्राह्मणों ने पैदा किया है। कैसे, तो लोगों को बहका दिया कि तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है, ऐसे कर उनको तो बेचारों को, गरीबों को ऐसे पंडलित कर दिया, और धनी आदमियों को तुम बड़े भाग्यशाली हो, अच्छे अगर पुष्ट लाकर उसे धन ले लिया, अपना काम चला लिया, ये धनी मिल गए और वो उनके सेवा करने लग गए, उनको पंडलित कर दिया, ऐसे कर संसार को भ्रम में डाल दिया, बहुत नुकसान किया। हम जानते हैं इन बातों। परीक्षित महाराज को कथा सुनाई सुखदेव जी ने, किसी झोंपड़ी में सुनाई क्या, राजा को सुनाई, ऐसे ही महाराज वेशम पायन ने जन्मेजय को सुनाई, जो कि राजा था। जनक जी महाराज राजा हुए, उन्होंने बातें सुनाई दूसरों, तो धनी आदमी और ब्राह्मण साधु मिल करके दुनिया का नाश करने में लग गए। किसी गरीब को सुने बताओ एक भी, सब धनी आदमियों को सुना। योग बल कृषि हुए तो धनी को सुनाई। ऐसे उन्होंने प्रश्न रखा, तो बात कही। मैंने कहा अच्छा इस बात मेरे सुन लो, कि सुनेंगे हम जानते हैं, हमने सब पढ़ा है, हम पुराण है उपनिषद है सब पढ़े हुए जानते हैं। ऐसे उठने लगे। मैंने कहा भाई बात मेरी सुन लो, मानने के लिए मैं कहता नहीं कि बाप मानो, पर सुन तो लो कि क्या सुने हम जानते हैं। उठ चले ही गए। मैंने यहाँ तक कहा कि मेरी बात सुनने से आपको पाप नहीं लगेगा, इतना तो मैं कह रहा हूँ, आपको दोष नहीं लगेगा, सुन लो। नहीं सुन उठ चले गए। अब बताओ आपके आश्रय हो गए, तुम क्या सुनाते? तो उस समय आई जैसे सुना था, अरे परीक्षित राजा था तो कथा सुनी। उस समय राजा था कि मरणासन्न होकर गंगा जी पर चला गया था। जन्मेजय को कथा सुनाई तो 18 प्रकार का कोड निकल गया, मरणासन्न हुआ, तब भीष्म पायन ने सुनाया। जनक महाराज ने ब्रह्म सत्र किया तो उसने सबको बुलाए, और वे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा, वे सब गौए ले जाएंगे। वहां याज्ञवल्क ने कहा, गार्गी आई, बड़ा वो हुआ, तो उसमें भी क्या गरीब ब्राह्मणों के लिए मना थी क्या? और भी कोई गरीब आता तो मना ही थी। एक बार अष्टावक्र जी आ गए तो दरबार ने रोक दिया अष्टावक्र जी, कहते बालकों के भीतर जाने की मना है, परमात्मा तत्व की ब्रह्मचर्चा हो रही है, बच्चे हल्ला करते हैं, इस वास्ते आपको जाने की मना ही है। छोटी अवस्था से उनने पूछा कि बालक शरीर से होता है कि बुद्धि से होता है? बालक अर्थ है मूर्ख बेसमझ, वह शरीर से छोटा हो तो मारू मूर्ख हो गया हो। तो दरवान भी जनक के चुप हो गया। अच्छा जाओ, गए तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े ऐसे चलाइयो। सभा में पहुंचे तो लोग हंस पड़े और कहा महाराज आइए। कि हाँ समारोह आया नहीं, मैं आ गया। बोलो समारोह बोलो। कहते महाराज समार कैसे कहते हो? आपने मेरा चमड़ा ही देखा, बात तो पूछी नहीं, चमड़े परीक्षा तो समारी ही अगर चमड़े को टेढ़ा देख रहे आप हंसे, समारी तो हुए। सब चुप हो बढ़िया, तो है तो कोई बला है, बात पूछो। तो आज भी बात लोगों में पढ़े लिखे समझदारों में हड्डी और चमड़े की बात ही है। कहा तो कह दे कि सब आश्रम मिटा दो, अरे कहा कि चमड़ा बढ़िया हो वो बढ़िया, चमड़ा देखे छोटा हो छोटा, अरे बड़ा हो बड़ा। क्या दशा हुई हमारे भारतवर्ष की, आश्चर्य आता इन बातों को देख करके। तत्व का जिज्ञासु नहीं है कि तत्व कहाँ मिलेगा, जहां तत्व मिले उसकी खोज करो, कहीं भी मिल जाए। रही कुथा गाड़ी वाला बड़ा गरीब भी बैठा था एक गाड़ी के लिए, गाड़ी वाहन था घर नहीं था, और राजा पहुंचे हुआ तो खुजली कर रहा था। उससे बातें पूछी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से समाधान नहीं होगा, उससे समाधान हो गया। तो आप उसको क्या देखते हो, पात्र कैसा है, कौन है, कहाँ का है? अरे बात क्या कह रहा है, द्रौपदी ने कहा है वहां वन में कि आप ऐसा दुख पा रहे हो, आपको जल्दी जाकर राज लेना चाहिए, खूब उकसाया। तो भीमसेन बोला, ननु वक्त्रि विशेष निस्पृहा गुण गृहिया वसने विपस्थित। श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो, वक्ता कौन है ये सर नहीं देगा। आप कहते समझ लो स्त्री जाती है, क्या कह रही है ये। अरे स्त्री और पुरुष हो, कहे क्या रही वो सुनो, कौन कह रहा है मत देखो क्या कह रहा है ये। तो हमारे श्रेष्ठ पुरुष होते थे तो इन बातों को देखते कि क्या कह रहा है, इसमें क्या तत्व है, इसमें गहरे उतर के समझो पूछो। इस तरह ख्याल करो तो जीव का कल्याण हो जाए, सदा के लिए महान सुख हो जाए, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। उस लाभ की प्राप्ति के लिए मैं कह रहा हूं ये बात। और आपको सबको प्राप्त हो सकता है, इसे मेरे संदेह नहीं है। करके देख लो आप, अरे बहुत सुगम, बहुत ही सरल। मैंने तो यहां तक कहा है कि संसार में कोई भी काम इतना सुगम नहीं है जितना ये पारमार्थिक बात सुगम है। कैसे है कि परमात्मा अपना है, अपना संसार अपना नहीं है। ये शरीर अपना नहीं, हार्ड मांस अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, प्राण अपने नहीं, जिनको आप समझे कुटुंबी और धन संपत्ति घर अपना, बिल्कुल ये बह मेर अपना नहीं है। पहले था नहीं, फिर अपना रहेगा नहीं, अब भी अपना नहीं है। आप अपने मन के मुताबिक सुख को बना सकते नहीं, रख सकते नहीं, अपना कैसे, ये अपना है ही नहीं। और प्रभु हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, ममैवान सो जीव लोग कहते हैं, वो प्रभु अपने। जब कभी ये सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही। क्योंकि रोज जन्मों के पाप भी पीछे से आए हुए हैं, मिले हुए हैं, हरि सदा के साथ, हर भगवान सदा के साथ है हमारे और हमारे हैं। इस बात से अंत काल में भी भगवान की याद आ जाए तो मेरा पार। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप कृपा करें, कहीं भी कोई भी मरता हो तो उसको नाम सुनाओ, क्या पता लगे तो बीमार अवस्था में भगवान नाम सुनाओ। कोई बीमार हो तो गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ। कहते लोग वहम करते हैं गीता सुनाएंगे तो लोग कहते तो मर जाएगा। अब क्या है, अब गीता सुनाते मरेगा। तो लोग वहम करते हैं, तो आप इतने बैठे हो कृपा करके, जब बीमार हो जाओ, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए तो गीता सुनाओ, भाई मेरे को गीता सुनाओ, ऐसे सुनिया करो। अरे मरोगे नहीं तो लोगों को बहम निकल जाएगी, गीता सुनने मरता तो नहीं आदमी। मेरे तो ऐसा देखा देखा हुआ है मैंने, मेरे को तो गीता सुनाई है, मैं गीता का पाठ किया खूब, तीन तीन चार चार डिग्री बुखार में गीता का पाठ किया। अब गीता जानने वाले पास में रहते हैं तो वो कहते गीता पाठ कर रहे हैं, और गीता पाठ कभी तो कोई अध्याय चलता है, कभी कोई अध्याय चलता है, कभी कोई अध्याय चलता है, बेहोशी में। तो वो उठपटांग देकर कहता है कि इनको होश नहीं है, नहीं तो गीता पढ़ रहे हैं और गीता सुना हूं और मरा नहीं हूं, ये सामने बैठा हुआ आपके। गीता सुनने से मरता नहीं, ना पढ़ने से मरता, ये बात सत्य है एकदम, हमारी देखी हुई बात है। अरे आप कोई बुखार आ तो सुनकर देख लेना कि देखना मर जाए तो कि नहीं मरोगे, डरो मत। मौत आए पहले से गीता है, कोई जहर है जो मार देगा, ये तो सुनो, नाम सुनो। हमारे बुखार हुआ उसमें कहा लोगों ने कि 48 घंटा आखिरी हद है। कलकत्ते की बात है, खून परीक्षा कर देखा कि अंतिम मलेरिया है और बस यहाँ तक तो खून के कीड़े आ गए हैं, वो यहाँ चढ़ जाएंगे तो वे खत्म है, और इंजेक्शन दिया तो ये बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकते। तो ना तो मैंने दवाई ली ना इंजेक्शन लिया, ये बच गया। देखो 48 घंटा कहा है, महीना तो 48 वर्ष तो नहीं हुए अभी, पर मरा नहीं। तो मरने वाला मरता है, बिना मरने वाला नहीं मरता, निश्चित बात। इस वास्ते आप डरना नहीं, आप सुनो औरों को भी सुनाओ, रीत डाल दो अपने घरों में। जहां कोई बीमार हो तो भगवत गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, उसको नींद आवे रात्रि में तब तो जाओ चुप, और नींद खुलते ही नाम सुनाओ, उसको पूछो रामायण सुनावे, गीता सुनावे, सत्संग की बात सुनावे, भक्तों के चरित्र सुनावे, भगवान के चरित्र सुनावे, जो रुचि उसको सुनाओ। और उसका इष्ट हो राम जी है, कृष्ण भगवान, शंकर, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश, जो परमात्मा का स्वरूप है जिसकी उसकी रुचि, उसी रूप की गाथ कथा सुनाओ, उसी का चित्र दिखाओ, प्यारे से प्यारा चित्र लगे वो सामने दिखाओ, भगवान की याद दिलाओ। इसलिए समान हित करने वाला कोई नहीं है, जो भगवान की याद दिलाने वाला है ऐसा कोई अपना हित करने वाला नहीं। माता पिता, भाई, बंधु, गुरु, सबसे वो श्रेष्ठ है जो हमारे भगवान की बात सुनाओ, हमारा कल्याण कर, और संसार में फंसा हुआ हमारा नहीं। एक बात याद आ गई, इन बहनों माताओं में न जाने क्या है, अच्छे अच्छे छोकरे बेचारे भगवत बात सुनना चाहते हैं, ऐसे आए महाराज माँ आ जा करके जल्दी ब्याह करो इसका, ये सत्संग में चला जाएगा तुम ब्याह करो जल्दी। मेरे पर असर पड़ा, किसी छोरे को ब्याह जल्दी कराना हो तो सत्संग में जाओ और सत्संग सुनो और साधु उपास चले जाओ, घर वाले जल्दी ब्याह कर देंगे, अटकल है। ये हमें देखा, ये सत्संग में नहीं चला जाएगा, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े लड़का हो गए, बड़ी अवस्था हो गई, ब्याह करना चाहता नहीं, मां नाराज हो गई, ब्याह नहीं करता अब क्या करो।
मेरे पास शिकायत आई, मैंने ब्याह करने की सम्मति दी, ब्याह करो।
कोई मेरे से पूछे ब्याह करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कब करना चाहिए। गोविंद गाजी ने सिद्धांत बना रखे थे, मैंने सुने ब्याह की पूछे तो ब्याह करने की कहो ना मत कहना, स्नान करने की पूछे तो कहना कि मत करो स्नान, भोजन करेंगे नहीं करेंगे ना मत करो, कि साधु हो जाएगा नहीं मत हो जाओ, ब्याह करेंगे नहीं करो, ये उल्टी पुल्टी बात कैसे। उल्टी इस तरह से ब्याह करें कि न करें तो उसके ब्याह के मन में है तो उसको रोको मत, आचरण भ्रष्ट होगा, वो इस बात करो कर लो जरूर। स्नान करें कि न करें तो बुखार होता है, कोई गड़बड़ी से पूछता नहीं, पूछता क्यों स्नान के लिए तो मत करो, भोजन करें कि न करें पूछता है तो कुछ गड़बड़ी है मत करो, साधु हो गए कि नहीं हो गए ना नहीं होना चाहिए साधु, अरे बैराग होगा तेजी का तो हो जाएगा, तो कच्ची अवस्था में कह दोगे हो जाओ एक बार तो हो जाएगा, पीछे साधु पढ़ा नहीं बना मुश्किल। इस बात की मेरी सम्मति ऐसी नहीं, साधु होने की जरूरत नहीं भाई, भीतर से साधु बनो। मैंने आपको सुनाया ये गीता वक्ता ना साधु हुए ना गीता श्रोता साधु हुए, दोनों कृष्ण में रहे तो गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, और वो कृष्ण आश्रम में बन सकता है खूब मौज से बड़े आनंद से, इसमें मेरी शंका नहीं है किंचित मात्र भी। जहां जो है धनी है तो धनी, गरीब है तो रोगी है तो निरोग है तो, वो सुखदायी परिस्थिति है तो दुखदायी परिस्थिति है तो, कैसी परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर सकता है। संसारिक काम तो भाई होगा नहीं, उसमें तो योग्यता है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, अवसर है, कहीं देखना पड़ेगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, क्योंकि परमात्मा हमारे हमारे में अभी, उसमें देरी की बात कैसी। ऐसी बात बड़ी ठीक तरह से है, सब प्राप्त कर सकते हैं, आप जहां काम करते हैं वहीं काम करते हुए। इतनी बात तो है, एक तो उस प्राप्ति की लगन हो भीतर चाहना, और एक पाप अन्याय नहीं करें। काम भले ही मशीन की तरह रात दिन करो, पाप अन्याय नहीं हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, संसार काम बाधक नहीं है। मालूम ऐसा होता है कि काम धंधा करते करते हमें समय नहीं मिलता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वजह से क्या करें, तो समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको मिले इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। जो काम करे वो भगवान का करते हैं, केवल इतना भाव बदल दो, दानव माता रसोई बना भाई, ठाकुर जी के बना रहे साहब, भगवान के भोग लगाएंगे, फिर भगवान के बाल बच्चे पाएंगे, ठाकुर जी की रसोई बना रही। बहनों माताओं भाइयों और क्या कहूँ, स्नान करते हो तो ठाकुर जी के लिए, आपको शर्म आवेगी टट्टी पेशाब करो तो ठाकुर जी के लिए। कि ठाकुर जी कैसे होगा कि भाई किसी का कमरा साफ करना है क्या, वो सेवा नहीं है, ये ठाकुर जी का है, इसको साफ करते हैं, गंदगी इसी दूर करते हैं, तो क्या ये सेवा नहीं है क्या, ठाकुर जी का काम नहीं है, ठाकुर जी का काम कर रहे, जो काम करो, भोजन करो ठाकुर जी काम कर रहे हैं, जल पी तो ठाकुर जी काम कर रहे हैं, भगत पर सोना हो तो ठाकुर जी का काम कर रहे हैं। क्योंकि माता है वो भोजन कराकर जल पिलाकर सुलाकर राजी होती है कि नहीं, अरे भगवान सदा की हमारी माँ, तो उसके सामने दुख पावे तो माँ को दुख होगा, इस वास्ते माँ की राजी के लिए करते, ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, अपने सुख पाने के लिए नहीं, अपने भोग भोगने के लिए नहीं, हाँ अपने लिए नहीं, अथवा दुनिया का हित करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए करते हैं, सबका सुधार कैसे हो, काम मैं अकेला करूं कल्याण संपूर्ण का हो। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है, हमारी बुद्धियों को अच्छे काम में प्रेरित करें, देखियो यो ना आता है ना, ना हम लोगों की बुद्धि जब एक करता है संपूर्ण के कल्याण को चाहता है, हमारी जितनी संस्कृति है ये सब दुनिया मात्र के हित के लिए, चाहे बैरी हो चाहे प्रेमी हो चाहे हमारा हितेशी हो चाहे हमारा द्वेषी हो, उसका भी कल्याण हो ये भावना हमारी होनी चाहिए, फिर आप जो काम करो भजन हो जाएगा। ये स्वार्थ जो करते हैं मेरे को मतलब मेरा मतलब सिद्ध हो, यहां से गड़बड़ी होती है, अरे मेरा मतलब चाहने वाले का मतलब सिद्ध होता नहीं, और सबका मतलब चाहने वाले का मतलब सिद्ध हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, पक्की बात है। सांसारिक वस्तु भी कब मिलती है, जो लेना नहीं चाहते हैं तब मिलती है, लेना चाहते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। घरों में आपकी बहन बेटी, बहन है आपकी दया की मूर्ति, कन्या है आपकी धर्म की दान की मूर्ति, वो भी खराब स्वभाव वाली होती है, और जो चीज देती मांग लेती है, भैया दे तो बड़ा चीज में सो जाए चली जाए, नहीं दे तो बहन नाराज हो जाए, ऐसी बहन आने वाली है तो सब अलमारियों में लगा ताला लगा देते हैं कि वो देखे नहीं कहीं, देखे तो मुश्किल हो जाएगी। बोलो बहन के लिए बेटी के लिए ताला लग जाए, जहां बहन होगी ये रह गए नहीं, ऐसे संत महात्माओं के सामने सब चीजें खुली पड़ी रहे, देखते नहीं लेंगे नहीं। कलकत्ता में मकान खाली पड़े हैं, किराए में नहीं मिलते, कानून बनाया गया जो किराया मिल गया तो छोड़ेगा नहीं, खाली पड़ा और स्वीकार है पर छोड़ेगा नहीं, फिर करेंगे। और हम लोगों रहने के लिए आ रहे जो तल्ला खाली है इसमें रहो, अरे खाली कहते हैं हमारा किराया देने बड़ा खतरा है, हमारे गर्ज कर देते हैं, उनके पैर में कब्जा नहीं करेंगे, और हम कब्जा करने लग जाए तो वो दशा हमारी हो जाएगी, फिर मिलेगा नहीं रहने के लिए। तो बोलो अपना कब्जा करने से लाभ होता है हानि होती है, पर तो माथे में कैसे बैठा हुआ बताओ, समझ में नहीं आता, कोई समझते नहीं, स्वार्थ करने से स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है स्वार्थ, अरे परमार्थ तो सिद्ध होगा ही कैसे। तो किस तरह से सबका कल्याण हो जाए इसमें विशेष ध्यान दो आप। तो मूल विषय चल रहा था कि अंतकाल में भी भगवान की याद आ जाए, याद दिला दे तो कल्याण हो जाए थोड़े से थोड़े समय में, और मूर्ख से मूर्ख हो उसके लिए भगवान के तमाम बुद्धि हो गए उनताम ये नमापयान्ति थे। दसवां अध्याय का 9, 10, 11 तीन श्लोक है, दसवां अध्याय का 9, 10, 11 मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंत चरमंति च, ऐसा मेरा स्मरण करते हैं, तेषाम सतत युगता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसे मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्व भजते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम प्रयांति थे, वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे भी मेरे को प्राप्त हो जाए, और तेषाम अनुकंपार्थम उनके ऊपर कृपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तमा नाशयामी आत्म भाव सु ज्ञान दीपेन भास्वता वेदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अंतःकरण में रहने वाला मैं अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान भगवान दे देते। बताओ उम्र कितना ही वर्ष क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक, भगवान प्रकट हो गए, उनके मन में आई भगवान की स्तुति करूं, स्तुति करना आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं, छोटे बच्चे ठहरे, भगवान ने अहंकार की छुआ दिया संग, महाराज 5 विमान सुखता संजय तखिल धामना करने लगे स्तुति। बताइए यू संग सुहाने से सब बुद्धि आ जा, देरी क्या लगे, वो परमात्मा शब्द रहेगा खजाना, उसकी याद करने से कोई बात कमी रहेगी, कमी नहीं रहेगी, कमी ज्ञान ध्यान सब आ जाए। बिल्कुल अपड़ भजन करने वाले संत हुए हैं, बिल्कुल अपड़, उनमें महाराज विलक्षण शक्ति आ गई, वाणी बोले जो बिल्कुल वेदों की ऋचाओं से मिला लो, शास्त्रों से मिला लो। फूला सिंह हुए पंजाब में, उनका जीवन चरित्र आया बहुत पुराने कल्याण में, मैंने पढ़ा, एक पंडित ने दिया था, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, सिख थे, जाट घर गए और बस गौए चरा दे अपने, छोटी अवस्था में कोई संत मिल गए, नाम जपने में लग गए, भगवान नाम जपने में लग गए, पर नाम जप करता हूँ ये भाषा नहीं थी, वो कहते लेखा करता हूँ, लोग उंगलियों पर लेखा किया करते, ग्रामीण आदमी ऐसे, उसका नाम लेखा था, लेखा करता ये भाषा, घर वाले भेज देंगे जाओ गाय चराओ, तो गाय चराओ तो गायों की जिंदगी रखनी पड़े, तो लेखा कैसे करे, लेखा करे तो गायों की जिंदगी कैसे रहे, तो गायों को कहता देखो गौ माता ये खेत जितने गए, इन खेतों में ऊपर का हिस्सा तो है मनुष्यों का और नीचा का हिस्सा तुम्हारे को है, तुम्हारे को मिलेगा, अभी खेत मत जाना, जब ये अपना ऊपर का हिस्सा ले लेंगे तो सब तुम्हारे को मिलेगा, ऐसे सुना देते। आप लेखा कर बैठे, गाय एक नहीं जाती खेत में, बाहरी बार चलती रहती, छोरों को पता लग गया वो अपनी अपनी गायों उन गायों में डाल देते अपनी और खेलते बैठे, गाय बाहर बाहर जाती रहती। 125-26 वर्ष की अवस्था हुई, उस पंडित ने पूछा कि महाराज हमारे योग दर्शन में लिखा है कि जो वाणी सच्ची बोलता है वो जो जबान कहता है वही हो जाता है, जो वाणी से निकले वही सच्ची हो जाती है, ये कैसे? तो बड़ा आश्चर्य किया कि ये पोथी में लिखी, ये बात पोथी में लिखी, कहाँ सा पुस्तक में लिखी, आजकल के लोग पोथी में लिखी वो बात होती है क्या? आज ऐसा आश्चर्य, वे कहते पोथी में लिखी, पोथी में लिखी, हाँ वो कैसे हो जाती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, वो उस टीका में मैंने कोई संस्कृति हिंदी टीका में नहीं देखा, ऐसी व्याख्या कर दी, ऐसी टीका कर दी, बढ़िया। कहते सच्चा बोलते बोलते उनका हृदय सच्चा हो जाता है, जो बात होने वाली होती है वही निकलती है, उस बात सच्ची हो जाती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं। तो बताइए कौन काट सकता है इसको, ये अपड़ आदमी की व्याख्या है। तो उस स्वतः शास्त्र के सिद्धांत की बात आने लगती है, क्यों? कि सब ज्ञान का आश्रय तो भगवान है, परमात्मा है, और उसके साथ एकता हुई वो खजाना सब खुल पड़ेगा। कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टोटो में, भीतर से बातें खुलती है महाराज, फिर क्या अंत आवे, कोई बात पूछो, कहीं की पूछो, कैसी पूछो, भीतर से निकलती आती है। आश्चर्य करते लोग, ये कैसे बात आ गई, कहाँ से आ गई, अरे कहाँ से कहाँगे, सब विद्याओं का केंद्र मूल परमात्मा है, उसके साथ एक हो गए, अब इसमें क्या कमी रहे। तो धन कितना कमाओगे, विद्या कितनी पढ़ोगे, शक्ति कितनी संचय करोगे, वो सब की सब उस परमात्मा में, एक साधे सब सब यथा तरोर मूल निषेधित, वृक्ष के मूलों में, मूल में जल डाला जाए तो उसके अंदर भुजा शाखा रूप शाखा टहनियां पत्ते फूल फल सब तरांतर हो जाएंगे। एक प्राणों को अंदर कर दिया जाए सब शरीर में शक्ति आ जाएगी, ऐसे सबके मूल परमात्मा, उसका सेवन किया जाए, ध्यान किया जाए, सब आपके सुधार हो जाएगा, व्यवहार का सुधार, परिवार का सुधार, समाज का सुधार, देश का सुधार, विदेश का सुधार, लोक सुधार, परलोक सुधार, सबके सब सुधार हो जाएंगे। क्योंकि सुधरने वाली मूल तो वो चीज है, उसको तो छोड़ दिया, काट कर फेंक दिया। मूल काटते पल्लव सींचा, मूल को तो काट दिया, अरे टहनी को लाकर पानी में रखा कि हरी हो जाए, पानी से हरी होती है, सड़ जाएगी वो तो वहां से, जल से वहां से आता तब होता है। ऐसे मूल परमात्मा है, उसको भुला करके तुलसीदास सद सुख चाहिए ऐसे प्रभु ही विचार। सब्जी के प्रश्न में क्या कहा, वो तो जाति पाति से नीति कुलहीन ऐसी एक स्त्री का उद्धार कर दिया भगवान ने, ऐसे प्रभु को भुला कर अरे मन तो सुख चाहता है, ऐसे प्रभु ही विचार। ऐसे प्रभु को याद करो, देखो कितनी विलक्षण का आदि है, स्वतः आएगी। तो वो याद करो और याद कराओ, और से भी कहो, प्रार्थना करो, लगाओ कि भाई भगवान में लग जाओ। ये भगवान की बड़ी भारी सेवा है, जीवों को दुर्गति से बचाकर सदगति में लगाने के समान कोई उपकार है नहीं। एकादश स्कंध में आता है दक्षिणा ज्ञान संदेशा, ज्ञान के समान कोई दक्षिणा नहीं, इसके समान दान नहीं, इसके समान पुण्य नहीं। कितनी बढ़िया बात, और आप करोगे तो आपका दान बढ़ेगा। धन में से खर्च कर दिया जाए, जितना दे दी जाए कम हो जाएगा, अरे पारमार्थिक बातें जू कहोगे त्यों आपकी चमकेगी और पैदा हो जाएगी। और विश्वास कहा है अपूर्व को यम कोशो यम विद्यते तो भारती, हे सरस्वती माता तुम्हारा खजाना बड़ा ही विलक्षण है, अलौकिक है। क्या के व्यय करते वर्धते, जो खर्च के जो बढ़ता है, और ना समझाती संचयात, संचय का नहीं देगा तो खत्म हो जाता है। कितनी विलक्षण बात, तो हमारे लाभ दुनिया के लाभ सब के लाभ ही लाभ, घाटा कहीं है ही नहीं। घाटा हो गया तो उल्टा रास्ता हो गया, अरे उन तरह से घाटा ही घाटा, नफा है ही नहीं। परंतु सुनता कोई नहीं है। एक पद आया उसने कहा, आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई। उसमें आया, दुखिया दिन रात रुला करते, दे दुखिया हंसते और खिलते, दुखिया दिन रात रुला करते, वे दुखिया हंसते और खिलते, वहां सुनने वाले लाखों थे, समझाने वाला कोई नहीं। आराम के सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो, जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा दिया है मसाना में। जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा दिया है मसाना में। वहां जलाने वाले लाखों थे, जिलवाने वाला कोई नहीं। वहां जलाने वाले लाखों थे, जिलवाने वाला कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के ऐसी बातें कर अंत में कहा है, ये छाल जगत का ऐसा है, अरु यार सभी का पैसा है। यह ख्याल जगत का है, अरु यार सभी का पैसा है। आ तम का कहना ऐसा है समझाता हूँ सुनता कोई नहीं आत्म का कहना ऐसा है समझाता हूँ सुनता कोई नहीं आराम है संग साधी जब वक्त या मतलब के हैं लोक सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं
मतलब के
है लोक सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं आराम के है सब साधी जब सुर नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने हो प्रभु परमार सनाही हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी एक तो भगवान और एक कोई प्यारे भगवान के ही भक्त ऐसे ऊंचे दर्जे ये बिना स्वार्थ मात्र जीव का हित करने वाले कन्नी बात की सुनते ही हेतु रहित जग जुग उपकार तुम तुम्हारे से और जितने संबंधी कुटुंबी है धन कमाओ झूठ कपट करो बेईमानी करो ठगी करो धोखेबाजी करो नरकों में जाओ हमारे को धन ला कर दो बस तुम्हारी दर्जे तुम भोगो तुम्हारे ये दशा संसार सुनते ही
तो भाई खूब विचार करो
अगर अपना हित चाहते हो कल्याण चाहते हो तो परमात्मा में लगो और परमात्मा में ही लगाओ दो ही बात है दोनों गलतियां भगवान को याद करो उपकार करो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से जो कुछ आपके पास शक्ति है उससे दूसरों का हित करो सेवा करो सुख पहुंचाओ। अभी ये पुर्जा आया है उसका आज अभी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है खासकर गायों की स्थिति बहुत ही करुणाजनक है गोधन को बचाने की व्यवस्था अधिक बहुत कम हो रही है अभी तक बहुत कम हो रही है थोड़ी जरा जहाँ हुई है वहाँ भी बड़ा गांव बड़े गांवों में और शहरों में गोधन बड़े परिणाम में छोटे गांवों में अगर सब नष्ट भर रहा है गोधन तो बात ठीक है गोविंद गा जी के साल में 96 सम्मत में अकाल पड़ा था उस समय में तीर्थ यात्रा निकली थी हम आए थे यहाँ भी आए थे और भी घूमे कलकत्ता में पहुंचे तो गोविंद गा जी ने व्याख्यान दिया था आज ये राजस्थान के जितने आदमी हैं वैश्य भाई जो धन कमाए हुए हैं ये सब के सब प्रतिशत 1 रुपया दे दे 99 रख लो 100 का 1 रुपया चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो चाहे शतपति हो चाहे सहस्त्रपति हो 100 में 1 रुपया दे तो राजस्थानी गौ में बच्चा है ये गोविंद गा जी कहा था। अब भले 100 ऐसे ही नहीं दे सकते फिर क्या दोगे दुनिया में नाम है मारवाड़ियों का एक दानी ऐसा ये दानी जहां से दान करती है अरे करती भी बात भी सच्ची हमारा तो आश्चर्य आया गीता में जहां वर्ण धर्म लिखा वहां वैश्यों के लिए दान नहीं लिखा क्षत्रियों के लिए लिखा शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धे चापि पलायनम दान मीश्वर भाव से क्षात्रियम कर्म स्वभाव क्षत्रियों का अरे कृषि गोरख वाणिज्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव मेरे को आश्चर्य आया कि दान पुण्य तो आज वैश्य भाई कर रहे हैं अरे गीता में लिखा क्षत्रियों के लिए क्या बात सोचा तो समझ में आई बात कि क्षत्रिय दान करते थे खुला, वेश दान करे तो कसा कसी बस प्राण बच जाए इतना इतना करें, ज्यादा नहीं दे सकते। अरे वो विचार कर क्षमा करना, मेरे तो भाई लेने का काम नहीं पड़ता है और लेने की इच्छा भी नहीं है, करूंगी मैं क्या, अन्न कपड़ा है जो है भोजन है और मेरी व्यवस्था शारीरिक निर्वाह आप प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, हमारा निर्वाह खूब मौज से खुला हो रहा है, जरूरत है नहीं कौड़ी एक की, परंतु गायों का ऐसा मौका आया है जिसमें दो बात है, दो बड़ा दुर्लभ अवसर है, पर भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा अवसर आवे नहीं कभी, पुण्य करने वालों के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। रुपया कोई खर्च करना चाहे तो आज गायों की सेवा में किया जाए, इधर तो महाराज कत्ल हो रही है, गवों को काट रहे हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या, गोधन समाप्त हो गया है, गांव में बैलों की जोड़ी थी जिस जगह आज गाड़ी में हल में अकेला बैल चलता है, अकेला बैल जोड़ी नहीं, गोधन खत्म हो गया है, काट काट के खत्म कर दी, और बचा हुआ है अकल पड़ा हुआ है इधर, इस वजह से वो मर रहा है। तो भाई आप लोगों से कहना है हमारा, आपके चच जाए और घर वाले सब राजी हो जाए और आपका चित्त भी प्रसन्न और उपयोग समझें तो गौओं की रक्षा के लिए आपको करना चाहिए जरूर, और करना चाहिए अपने हाथों से। धनी आदमी धन दे करके निचल निश्चल हो जाते हैं कि हमने गौओं को इतना दे दिया, उससे ही अंतगण शुद्ध होगा, लाभ होगा, परंतु स्वयं जाकर के घास चराओ गायों को, गायों को चरती देखोगे, उससे जो शुद्ध होगा वो शुद्ध केवल रुपयों से नहीं होता, और जो परिश्रम करके स्वयं गौ की सेवा करते हैं उनका अंतकरण बहुत जल्दी शुद्ध होगा, विशेष लाभ होगा। उस सानवे सम्मत में भी जब गौओं का काम पड़ा था हमारे साधु गए थे, और अब भी गांवों के बीच हमारे साधु काम कर रहे हैं, पैसा तो है ही नहीं बेचारा, लेते ही नहीं, कहां से लावे, खटकर परिश्रम करते हैं गायों की सेवा के लिए। सत्संग में रहने वाले भाई उनको मैंने प्रेरणा की, अभी सत्संग तुम करते हुए तो पुलिस कर लोगे, अभी गऊ में लेकर जाओ, तो गायों के काम में गए सेवा करते हैं, पैसे नहीं, पैसों से इतना काम नहीं होता जितना सेवा अलग से, ऐसे सेवा करने वाले आदमियों की बड़ी भारी जरूरत है। और एक बात है कि सेवा करने वाले उत्साही होंगे तो धन की कमी नहीं रहेगी, धन देने में लोग संकोच इस वास्ते करते हैं कि जितना देते हैं उतना काम नहीं आता, गाड़ी खा जाते हैं बीच में, ये गुड़ था और गया ब्रह्मा जी के पास, ये बालकों की कहानी आती कहानी, गुड़ ने जाकर कहा कि महाराज मैं क्या करूं, पशु खा जाए, पक्षी खा जाए, आकाश में पक्षी खा जाए, जल में मछलियां खा जाए, ये मनुष्य खा जाए, जानवर खा जाए, कीड़े ही खा जाए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी मन तो मेरा भी चलता है, कहां जाओ बताओ, ये दशा हो रही है। तो जिसके हाथ में पैसा आ जाए वो मैं ही खा लूंगा, ये दशा हो रही है। तो हमारे ऐसे भाइयों की आवश्यकता है, स्वयं महाराज सेवाव्रती हो और ऐसे भाइयों की जरूरत है, उस धन की जो खुले हाथों से मौका आ गया है। मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान ऐसा न करे मौका फिर आवे, अकाल पड़े तब होता है ना, एक आदमी बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीमारी में पड़ा सिसक रहा है, शीतल ज्वर आया गो जोर से, घर पर कोई नहीं, एक भाई मिलने को आ गया अचानक, उसने कपड़ा उठाया ठीक किया, जल गर्म किया दिया, सब सेवा करी, फिर दाह लगी तो हवा करता है, सिर दबाता है, सेवा करता है, बुखार में खूब सेवा कर। अब जब बुखार उतर गया तो वो बुखार वाला बोलता है कि भाई अब क्या करूं, तेरा बदला कैसे उतरे, ऐसे उतरे कि तेरे को बुखार आवे, और घर पर सेवा करने वाला कोई हो नहीं, फिर मैं आऊं और सेवा करूं तो तेरा बदला उतर, नहीं तो तेरा कैसे बदला उतर। तो भाई ये सेवा का अर्थ हुआ कि तुम भी बीमार पड़ो, तो अभी मौका बढ़िया आया, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा अकाल पड़े और दान करें, ये भावना मत करना कर। ऐसा मौका पड़े ही नहीं। राम जी ने हनुमान जी से कहा, मैं वो जीर्ण राम या तू योपकृत कपे, हनुमान जी तुमने जो हमारा उपकार किया है वो ऋण है, परंतु वो ऋण मेरे में ही रह जाए, मैं चुकाना नहीं चाहता, ऋण मेरे में ही जीर्ण, मैं वो जीर्ण राम या तू योपकृत कपे, तुमने जो उपकार किया वो मेरे पर ही रह जाए ऋण सदा के लिए। क्यों? नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति में भी वांछती, प्रत्युपकारार्थी होता है वो विपत्ति चाहता है कि तुम्हारे में ऐसा पड़े कि बाप तो निकाल दे घर से और स्त्री को ले जाए राक्षस और भाई के हो जाए मूर्छा, फिर काम पड़े तो हनुमान जी लाल अमृत देवे, तो ऐसे तुम्हारे आफत हो जाए तो मैं सेवा करूं, तुम्हारे में कभी आफत आवे ही नहीं हनुमान, वो तुम्हारा ऋण मेरे पर ही है, पर मौका पड़े ही नहीं, तो ऐसा भगवान की कृपा हो जाए कभी ऐसा मौका पड़े ही नहीं, परंतु भाई आ गया है राम जी में भी आफत आ गई तो सेवा का मौका है। भगवान शंकर हनुमान बन करके सेवा करते हैं, सब तरह की सेवा करें, पर हम के लिए अपने लिए अन्न की जरूरत नहीं, राशन की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, वृक्षों पर बैठ के पत्ता खा ले और काम सबसे ज्यादा करें जोर से। राम जी के दल में सबको मूर्छा कर दी, जामवान जागा, कहते क्या दशा है, हनुमान है कि नहीं जीता, हनुमान हनुमान जीता है तो कोई खतरे की बात नहीं, हनुमान अगर मर गया तो भाई सब खतरे में, राम जी की नहीं पूछी है जामवान ने वाल्मीकि रामायण में, देखो भगवान राम जी जीते हैं कि नहीं, हनुमान जीता है कि नहीं। तो इस तरह से काम करने वालों की जरूरत होती है महाराज, और कितनी विचित्रता होती है कि राम जी का जहां मंदिर वहां तो हनुमान जी का मंदिर है ही मूर्ति है ही, पर हनुमान जी का मूर्ति है वहां पर राम जी की सब जगह नहीं है, तो मंदिर ज्यादा हनुमान जी के हुए कि राम जी के, जगह जगह हनुमान जी के मंदिर, गांवों में खेतों में बाहर भीतर एक एक गांव में कई सेवा करने वाले थे महाराज। ऐसे जो सेवा का मौका पड़ जाए तो भाई वीर हनुमान की तरह उत्साह पूर्वक काम करे अच्छी तरह से, है किस दिन के लिए, शरीर किस दिन के लिए, धन किस लिए, अपने पास इज्जत प्रतिष्ठा मान आदर, आपको पद मिला, अधिकार मिला, राज्य मिला, स्वतंत्रता मिली, किस लिए, सेवा करने के लिए, ये हाथों से निकल जाएगी, ये रहेगी नहीं, ना संपत्ति रहेगी, ना बल रहेगा, ना विद्या रहेगी, ना बुद्धि रहेगी, ना ये पद रहेगा, ना अधिकार रहेगा, ना योग्यता रहेगी, ये है जितने जितने काम में ले लो। तो आप लोग खूब विचार करके और दान देव काम करें, और साथ में वैसा मैं नहीं कहता कि किसी को दे दो, आप खुद रहो, आपके विश्वास पात्र रहे, जाकर के स्वयं खट करके परिश्रम करके जाएंगे सेवा करो, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा, इस वास्ते किसी रीति से ही ग्रह बस जाए। मान लो ऐसी दशा भी हो जाए कि गाय को खूब दिया, गायों को धन भी ला करके दिया, चारा भी दिया, सब तरह का दिया, इधर वर्षा हुई गाय मर गई, तो लोग कहते क्या फायदा हुआ, बड़ा भारी फायदा हुआ, मरने वाली मौत से मरी है, आपको लाभ हो जाएगा इसमें संदेह नहीं। एक भियाणी के पास में गांव में रहने वाला सुनार था, ये बीती हुई घटना बताता हूँ, तो बीमार पड़ा तो इधर आ गया था, बीकानेर की तरफ से जा रहा था, चूरू स्टेशन पर उतरा, वहां बुखार हो गया, एक धर्मशाला में ठहरा, विद्याधर जी वहां के वैद्य वो गए, अभी थोड़े वर्षों की बात बीती हुई, देखा और भाई बुखार तो तेज है, खतरा है, नाम पता पूछ घर वालों को उतार दिया, घर वाले आए सेवा करने लगे, तो उस दिन बोला सुबह के, अब मैं नहीं मरूंगा। कहते क्या? मेरे गांव में थोड़ी वर्षा हुई थी, वर्षा होने पर एक तलाई थी, छोटा सा तलैया, उसमें पानी आया था, वो पानी सूख गया, कादा था। एक गऊ गई पानी पीने के लिए, तो कादे में फंस गई, निकल नहीं सकी। रात्रि में वर्षा हुई तो पानी भर गया। तो वो कहता है मैं सुबह गया तो एक तो सींग एक नलसुन आए, तीन दिशे बाहर और सब पानी में। पता लगा प्रकाश से कि गऊ है कोई, तो गांव में जाकर रस्से लाकर उसको निकाला, बाहर निकल गई किसी तरह से ही निकाला, घाम में रखा, कांपती बच गई, एक दो दिन जी और मर गई। उस बुखार में उसको सपना हुआ, गऊ कहती बेटा तुमने मेरा प्राण बचाया, तेरा प्राण मैं बचाती हूं। नहीं मरा, ठीक हो गया। दिल्ली में ये पुरानी बात है, ये तो अभी थोड़े वर्षों की बात हुई, मैं कहता हूं पुरानी। अंग्रेजों का राज्य था, उसमें हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ, उसमें मुसलमान एक बहुत पहलवान था, उसने बहुत लूट और बहुत आग लगाई और अपने जितने भी शागिर्द थे उन्हें सबको ही परिश्रम करना पड़ा। शाम के वक्त वो खाना खाएंगे ऐसे करके गाय को पकड़ लिया, गाय को पकड़ के ले जा रहे थे बसड़ा, साथ में गाय घबरा आ गई, तो पहलवान को आप इसको पकड़ो हम ले आते हैं सामान। वे सामान मसालावादी लेने वास्ते गए बाजार में, गाय बहुत घबराई हुई देखी उस मुसलमान को आ गई दया, घबराहट देख करके पशु समझ जाते हैं कि अब ये खतरा है यहाँ, तो छोड़ दिया। तो वो भागे पीछे बसड़ा भाग गया, लोग आए को वो तो भाई भाग गई, छोड़ी भाग गई वो। फिर मुकदमा चला, मुकदमा चलने पर पहलवान को हुआ फांसी का हुक्म, उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, इतना अनर्थ किया। फांसी लगाई गई, काला टोप पहनाया गया, फांसी लगाई गई, जितना मिनट रखते उतना रखा और जीता बच गया। पूछा क्या हुआ? कि मेरे दोनों पैरों के नीचे दो सींग थे, उस पर ठहर गया, लटका नहीं, फांसी लगेगा, लटकता है तो फांसी जोर से लग जाती है, नार लंबी हो जाए, मर जाता है। अब पैरों के नीचे दो सींग, उस ऊपर खड़ा है, कैसे फांसी लगे? अगर जितना मिनट उतना रख दिया, अब फांसी लगनी चाहिए। तो न जाने गऊ किस समय में कैसे प्राण बचाती है, ऐसी घटनाएं हुई और होती है। ऐसी गऊओं की रक्षा का काम पड़ जाए तो भाई अपने को उत्साह पूर्वक करना है, मनुष्य जन्म को सफल करना है। एक तो चीज वस्तुओं के द्वारा दे करके और एक भगवान को याद करके, दो चीज है जो अपने पास है वो करो, नहीं है तो खट कर परिश्रम करो, सेवा ही करो, प्रचार ही करो, लोगों से ही कहो, भगवान ने नाम में लगाओ, गीता में लगाओ, रामायण में लगाओ, किसी तरह से पारमार्थिक मार्ग में लगा दो। जिससे राम 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 भगवान को याद करना था, ये बात है खास।
उसने स्वामी जी महाराज के मुंबई यात्रा के सत्संग का सहायक,
जय सीता राम सीताराम जय सीताराम जय सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम Yeah.